हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद दसवां अध्याय श्लोक संख्या 26 और 27। इस आध्यात्मिक ज्ञान में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मायं ददाति स्वपदान्तिकम्। वंशी विभूषितकरा नवनीरधाभा पीतांबरधरो बिंबफलधरोष्ठा पूर्णेन्द्र सुंदर मुखात् अरविंद नेत्रा कृष्णात् परम किमपि तत्व अहम् न जाने। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुवन्ति वेदीसांगपत्क्रमोपनिषदि गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदो सुरासुरगणा देवाय तस्मे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायामुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भक्त्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती युत्तमश्लोके भक्तिरभवति नैष्ठिकी। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत कथाधार श्रीवासदि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। प्रथम स्कंद स्वाध्याय जिसका शीर्षक है द्वारिका के लिए भगवान श्री कृष्ण का प्रस्थान, श्लोक संख्या 26 27 कृपा करके मेरे साथ इन अत्यंत ही पवित्र शब्दों को उच्चारण करने का प्रयास कीजिए। हस्तिनापुर की जो स्त्रियां हैं वो भगवान के वैभव और ऐश्वर्य के साथ इस संसार में उत्पन्न होने के अवतार होने के कारण बताने के बाद वो श्री कृष्ण के साथ जिनका संबंध है, मतलब वो कुल जिसके साथ भगवान का संबंध है, वो स्थान जिस जहां पर भगवान ने जन्म लिया अथवा जहां पर भगवान ने लीलाएं की, उन सब वस्तुओं की, उन जो भगवान के साथ संबंधित हैं, उन कुल और स्थान की प्रशंसा कर रही हैं और बता रही हैं कि सबसे प्रशंसनीय जो वंश है वो कौन सा है और सबसे प्रशंसनीय जो भूमि है, स्थान है, वो कौन सा है। कृपया मेरे साथ उच्चारण कीजिए। अहो अलम श्लाघ्यतमं यदुकुलम्, अहो अलम पुण्यतमं मधुर्वनम्, यदेश पुंसां ऋषभ श्रियः पति, स्वजन्मना चक्रमणेन चांसति। अहो अलम श्लाघ्यतमं यदुकुलम्, अहो अलम पुण्यतमं मधुर्वनम्, यदीश पुंसां ऋषभः श्रियः पति, स्वजन्मना चक्रमणेन चांसति। अहो अलम श्लाघ्यतमं यदुकुलम्, अहो अलम पुण्यतमं मधुर्वनम्, यदीश पुंसां ऋषभः श्रियः पति, स्वजन्मना चक्रमणेन चांसति। अहो अलम श्लाघ्यतमं यदुकुलम्, अहो अलम पुण्यतमं मधुर्वनम्, यदेश पुंसां ऋषभ श्रियः पति, स्वजन्मना चक्रमणेन चांसति। अहो अलम श्लाघ्यतमं यदुकुलम्, अहो अलम पुण्यतमं मधुर्वनम्, यदेश पुंसां ऋषभः श्रियः पति, स्वजन्मना चक्रमणेन चांसति। शब्दार्थ अहो अलम श्लाघ्यतमं। अहो अलम अर्थात कितना आश्चर्य है, वो कह रही है वास्तव में यदि इस संसार में कोई बहुत बहुत ही सचमुच अगर कोई प्रशंसनीय कुल है तो वो कौन सा है, वो यदुकुलम, जो यदुकुल है, सबसे प्रशंसनीय कुल जो है, वंश जो है, वो यदुकुल है। अहो अलम श्लाघ्यतमं यदुकुलम्, इसका कारण क्या है? वे कहती हैं यदेश पुंसां, यद एश, क्योंकि ये जो समस्त जीवों का ऋषभ है, समस्त जीवों का नायक है, ये जो परम पुरुष भगवान सामने खड़ा है ना, वो यदेश पुंसां ऋषभ श्रियपति, जो लक्ष्मी है वो भी इनकी दासी है, वो लक्ष्मी के पति हैं, और ये जो भगवान है ना, स्वजन्मना, स्वजन्मना मतलब जन्म के द्वारा, उन्होंने ये भगवान का जन्म क्योंकि यदुकुल में हुआ है, इसलिए अपने जन्म के द्वारा यदुवंश की कीर्ति को इतना विख्यात कर दिया, इतनी ज्यादा। अब यहाँ पर बताए श्लाघ्यतमम, श्लाघ्यतमम का मतलब होता है, देखो एक तो होता है ध्यतम, ध्य मतलब श्लाघ्य होता है, श्लाघ्य का मतलब होता है प्रशंसनीय कोई होता है ना, उसका मतलब होता है श्लाघ्यतम मतलब सर्व यशस्वी, यानी कि जिसकी बहुत ज्यादा कीर्ति होती है, और अगर उससे लगा दिया श्लाघ्यतम यानी उससे भी ज्यादा यशस्वी है, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अहो अलम श्लाघ्यतमम, यानी सर्वाधिक यशस्वी। अब इस यानी इसका मतलब क्या है कि वैसे तो बहुत सारे भगवान के अवतार हुए हैं और समस्त अवतार जो है अलग अलग कुल में हुए हैं, अलग अलग वंश में हुए हैं, क्योंकि भगवान तो अनेक अवतार लेते, जैसे हमने पिछले श्लोक में पढ़ा था कि वो हर युग में भगवान अवतार लेते हैं, भवाय रूपाणी ददत युगे युगे। तो फिर अब हर युग में भगवान लेते हैं तो दूसरा कोई ना जन्म लेते हैं, हर जब भी कोई दूसरा युग होता है तो दूसरा, जैसे ऋषभ देव का जन्म हुआ महाराज प्रियव्रत के वंश में, श्री राम का जन्म हुआ इक्ष्वाकु महाराज के वंश में। तो इस तरह से जिस भगवान का अवतार होता है वो कुल निस्संदेह यशस्वी होता है, परंतु आज ये गोपियां, ये जो कुल स्त्रियां हैं हस्तिनापुर की, वो बता रही हैं कि सबसे अधिक अगर कोई यशस्वी कुल है तो वो यदुकुल है। अहो अलम श्लाघ्यतमम यदुकुलम, क्योंकि स्वयं अवतारी ने, जो कि यदैष पुंसाम ऋषभाश्रियपति, जो वास्तव में जो अवतारी हैं भगवान श्री कृष्ण, जो समस्त अवतारों के उद्गम है, समस्त अवतारों के जो स्रोत हैं, तो वो यहाँ पर आके जिन्होंने जन्म लिया स्वजन्मना, यहाँ पर जन्म के क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का हुआ तो धन्य है यदुकुल, जहाँ पर साक्षात भगवान ने जन्म लिया। और आगे कहते हैं यदीश पुंसाम ऋषभ श्रियपति स्वजन्मना च क्रमणेन चांसति। संक्रमणेन मतलब जहाँ पर भगवान ने विचरण किया, कौन सी जगह, अहो अलम पुण्यतमम मधुर्वनम। देखो यहाँ पर यदुकुलम को कहा गया है श्लाघ्यतमम, यानी परम यशस्वी, यानी सर्वाधिक यशस्वी, और अहो अलम पुण्यतमम मधुर्वनम, यानी कि सबसे ज्यादा यशस्वी तो यदुकुल है, परंतु सबसे ज्यादा महान इस संसार में सबसे ज्यादा पुण्य भूमि, यदि महान भूमि कोई है तो कौन सी है, मधुर्वनम। मधुर्वनम यानी ब्रजभूमि जो है वो सबसे परम पवित्र भूमि है, क्योंकि हमें अपना मनोरथ पूरा करने के लिए पुण्य भूमि में जाना पड़ता है। तो कोई जैसे इसमें कोई संदेह नहीं है कि जैसे जो भी ये तीर्थ स्थान है हमारे, इससे गंगा है, हरिद्वार है, ऋषिकेश है, और मथुरा, द्वारिका, और ये जितने भी शुद्ध जितने भी जगन्नाथपुरी है, जितने भी यात्रा स्थान है, बद्रीनाथ है, रामेश्वरम है, तो सारे ही पुण्य स्थान है। लेकिन यहाँ पर क्या कहा, पुण्यतमम, यानी कि पुण्यतम इस सर्वाधिक, अगर कहीं पर पुण्य प्राप्त होता है ना किसी भूमि में, सबसे अधिक पवित्र कोई करने वाली अगर कोई भूमि है तो वो कौन सी है, मधुर्वनम। तो हमें कभी कभी इस जगह पर अवश्य जाना चाहिए, भगवान ब्रजभूमि। ब्रजभूमि में क्या है, यहाँ संसार में जो भौतिक जगह है वहां पर रहते रहते हम अपवित्र हो जाते हैं, हमारा देह अपवित्र हो जाता है, हमारी बुद्धि अपवित्र हो जाती है, मन अपवित्र होता है। तो फिर क्या करना होता है, हमें यात्रा करनी होती है ऐसी जगहों पे। तो फिर हमें क्या, इस यहाँ पे बताया जा रहा है कि यदि आप पवित्र होना चाहते हो, वास्तव में यदि चाहते हो, तो फिर सबसे अधिक पवित्र करने वाली, अहो अलम पुण्यतमम मधुर्वन, सबसे ज्यादा पवित्र करने वाली, तो वो कोई जगह क्या है, मधुर्वनम, ब्रज मंडल में सबसे अधिक पवित्रता प्राप्त होती है। और ये तो भक्तों अनुभव की गई देखी हुई बात है कि ब्रज मंडल में आज भी कण कण में भगवान का प्रेम भरा हुआ है। ये पुण्यतमम भूमि है, ये ऐसी जगह है जहां पर साक्षात भगवान श्री कृष्ण ने चंक्रमेण खुद रासलीला की है, जहाँ पर यहाँ की भूमि में भगवान लौटे हैं, सबसे अधिक परम पवित्र करने वाली है, क्योंकि यहाँ पर भगवान ने भ्रमण किया है। यहाँ की कण कण से, यहाँ के एक एक वृक्ष से हमें ऐसा लगता है कि वास्तव में भगवान है। अभी भी एक एक वस्तु को देखकर हमें भगवान की अनुभूति होती है, और भी तीर्थों में पवित्रता प्राप्त होती है, परंतु वरदान जो बहुत ज्यादा हमें कृष्ण के प्रेम की प्राप्ति वास्तव में कहीं पर होती है ना, तो वो वृंदावन में होती है। वहां पर कृष्ण के प्रति अलौकिक आकर्षण है। इवन जो लोग भगवान से प्रेम नहीं करते, नास्तिक होते हैं या निराकारवादी होते हैं, जो मूर्ति पूजा में स्वीकार नहीं करते, वो भी यदि वृंदावन में चले जाए ना, तो वो वास्तव में कृष्ण प्रेम की ओर आकर्षित होते हैं। जब देखते हैं कि लाखों लोग ब्रजमंडल में परिक्रमा कर रहे हैं, किस तरह से कृष्ण की ओर अपने प्रेम का बखान कर रहे हैं, तो कहां पर कोई अपनी नास्तिकता को रख सकता है भला। मतलब ये एक ऐसा दिव्य प्रभाव पड़ता है ना उस स्थान का, जब वहां पर जाते हैं तो बुद्धि इतनी निर्मल हो जाती है, इतना आकर्षण होता है कि वास्तव में हमें रियलाइज होती है भगवान की अनुभूति। वृंदावन का एक एक स्थल परम पावन है, एक एक जगह की जब हम सोचते हैं, जैसे राधा कुंड है, श्याम कुंड है, गहवर वन, बरसाना, वंशीवट, सेवा कुंड, एक एक जगह में अभी भी कृष्ण की अनुभूति होती है। वास्तव में भक्तों, जब कृष्ण चाहते हैं ना कि किसी को मेरा प्रेम प्राप्त हो ना, तो राधा रानी उन्हें वहां पर वृंदावन में बुला लेती है। ऐसे कहते हैं, राधा रानी की कृपा होती है तो ही वृंदावन में कोई जा सकता है। राधा रानी की कृपा के बगैर कोई वृंदावन में नहीं जा सकता। तो राधा रानी जिस पर कृपा करती है, मतलब वहां पर क्या होता है, कण कण से राधे 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 की आवाज आ रही होती है। वहां पर तो कृष्ण सेवक है, राधा रानी जी स्वामिनी है, और हर एक के मुख से, इवन जो रक्षा वाले निकल रहे होते हैं, वो भी बोलते हैं राधे राधे राधे, गूंज रहा होता है हमारे पूरी हमारी मत्ती में राधे कृष्ण। इसी समय वो ब्रज के जो लोग हैं, वो साधारण गाली देते हैं भगवान से, कृष्ण कैसे बोलते हैं ये छोरा, और मतलब इतना अपनापन है उनका। कृष्ण वहां से जाते हैं और इतनी पवित्र नाम है ये, खाली नाम भी हम सुनते हैं। वहां पर जाते हैं वृंदावन में, ऑटो वाले होते हैं, वो भी बोलते हैं मथुरा मथुरा मथुरा, कौन लेगा मथुरा मथुरा, फिर बोले राधा कुंड राधा कुंड राधा कुंड, फिर वहां पर जाएंगे तो वहां पर बोले वृंदावन वृंदावन गोवर्धन। मतलब जैसे ऐसा लगता है अगर कोई ना भी जाएगा ना, तो भी उसे कृष्ण प्रेम अपनी ओर आकर्षित करेगा। वृंदावन के कण कण में कृष्ण प्रेम निहित है। तो इसे कहा जाता है कि जिसे सुविधा हो उससे चाहिए कि हर साल वृंदावन की यात्रा अवश्य करे, क्योंकि उससे हृदय क्या है, अहो अलम पुण्यतमम मधुरवनम, उससे हमारा हृदय पवित्र होता है, हमारी बुद्धि पवित्र होती है, हमारे विचार शुद्ध होते हैं, वहां की वाइब्रेशन से हमारे हृदय में भक्ति का संचार होता है। अगर सुविधा नहीं हो तो भले 2-3-4 साल के अंदर एक बार अवश्य वहां पर जाके यात्रा करनी चाहिए। तो कहते हैं, स्वजन मनाच क्रमणे क्रमणे न चांचते, क्योंकि भगवान ने स्वयं जन कर अपने जन लिया, उसके द्वारा यदुवंश की, और संक्रमणे न यानी रास विलास किया, जहां पर भगवान ने लीलाएं की, तो ऐसी जगह उन्होंने भगवान ने क्या किया, चांचती यानी कि इस यदुवंश को और ब्रजभूमि को अलंकृत किया, महिमावान किया। तो ये वास्तव में महिमा, सबसे ज्यादा महिमा अगर किसी कुल की है तो किसकी है, यदुवन की, और अगर कोई पुण्य भूमि है तो क्या है, मधुवन है, मधुवन ब्रजभूमि है। अनुवाद देखिए, अहो यदुवंश कितना यशस्वी है और ब्रज की भूमि कितनी पुण्य है, जहां समस्त जीवों के परम नायक लक्ष्मीपति ने जन्म लिया और बचपन में विचरण किया है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, श्रीमद भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अपने दिव्य आदुर्भाव त्रोधान तथा लीलाओं का विशद वर्णन किया है। भगवान अकल्पनीय शक्ति से किसी परिवार या स्थान विशेष में जन्म लेते हैं। वे बद्ध जीव की भांति जन्म लेकर एक शरीर त्याग कर दूसरा शरीर नहीं धारण करते। उनका जन्म सूर्योदय तथा सूर्य अस्त की भांति है। सूर्य पूर्व में उदय होता है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि पूर्वी क्षितिज उसका जनक है। यानी कि अगर पूर्व साइड से उत्पन्न होता है ना सूर्य, तो इसका मतलब थोड़ी कि पूर्व के कारण पूर्व ही उसका पिता है। जन्म सूर्य था पहले से, वहां से सिर्फ निकला है। सूर्यमंडल के प्रत्येक भाग में सूर्य का अस्तित्व रहता है, किंतु वह एक निश्चित समय पर दृष्टिगोचर होता है और फिर उसी तरह किसी अन्य निश्चित समय पर अस्त हो जाता है। इसी तरह भगवान इस ब्रह्मांड में सूर्य की भांति प्रकट होकर फिर हमारी दृष्टि से ओझल हो जाते हैं। वे हर समय हर स्थान पर विद्यमान रहते हैं, लेकिन जब वे अहितु की कृपावश हमारे समक्ष प्रकट होते हैं तो हम मान बैठते हैं कि उन्होंने अवतार लिया है। तो ये वास्तविकता है। जब सूर्य उदय होता है तो ऐसा लगता है कि सूर्य का जन्म हुआ है, लेकिन वास्तव में सूर्य पहले से विद्यमान होता है, सिर्फ हमारे दृष्टि के सामने उस समय आया होता है। उसी तरह सूर्य जब अस्त होता है तो भी सूर्य विद्यमान होता है, हमारी दृष्टि से ओझल होता है तो हम समझते हैं सूर्य अस्त होता है। उसी तरह से भगवान विद्यमान है, परंतु जब हमारे सामने आते हैं, प्रकट होते हैं, हमारी दृष्टिगोचर होते हैं हमारे नेत्रों के सामने, तो हमें क्या लगता है कि भगवान ने अवतार लिया। जो कोई इस सत्य को शास्त्रों की कथनानुसार समझ पाता है वह शरीर त्याग करते ही मुक्त हो जाता है। मोक्ष अनेक जन्मों के बाद और वह भी धैर्य ज्ञान तथा वैराग्य के बाद प्राप्त होता है। लेकिन यदि कोई भगवान के दिव्य जन तथा कर्म के मर्म को सचमुच समझ लेता है तो वह तुरंत ही मोक्ष पा लेता है। यह निर्णय श्रीमद् भगवत गीता का है। जन्म कर्म समय दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वता। श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं वास्तव में मुक्ति प्राप्त करना इतना सरल नहीं है, लेकिन भगवान एक सरल उपाय दे दिया। भगवान ने एवं यो वेत्ति तत्वता, जो मेरे जन्म और कर्म को समझ लेगा, त्यक्ता देव पुनर्जन्म नैति मामेति। वो जब देह को त्याग करेगा तो दूसरा जन्म नहीं मिलेगा बल्कि मुझे प्राप्त करेगा। लेकिन जो अविद्या के अंधकार में है वे यह मान बैठते हैं कि भगवान के जन्म तथा कर्म भौतिक जगत में एक सामान्य व्यक्ति जैसे होते हैं। ऐसे अपूर्ण निष्कर्ष से किसी को भी मोक्ष नहीं मिल सकता। जो ये सोचते हैं कि संसार में जब भगवान जन्म लेते हैं तो सामान्य व्यक्ति की तरह उनके कार्य होते हैं, ये जो सोच है, ये जो मनोवृत्ति है, उसको कभी भी मुक्ति नहीं दिला सकती। इसे भगवान कहते हैं अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितम्। 9.11 में भगवान ने बताया जब मैं मनुष्य देह धारण करता हूँ तो जो मूर्ख हैं, मूढ़ हैं, वो मुझे नहीं जान सकते, मेरे परम भाव को नहीं समझ सकते, तो उनको कभी भी मोक्ष प्राप्त नहीं होता। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं अतएव यदुवंश में राजा वसुदेव के पुत्र के रूप में उनका जन्म और मथुरा भूमि में नंद महाराज के परिवार में उनका भेजा जाना, ये सब भगवान की अंतरंग शक्ति की दिव्य योजनाएं हैं। यदुवंश तथा मथुरा वासियों के सौभाग्य का अनुमान भौतिक दृष्टि से नहीं लगाया जा सकता। यदि भगवान के जन्म तथा कर्म की दिव्य प्रकृति को जान लेने मात्र से सरलता से मोक्ष मिल सकता है, तो फिर जिन लोगों के ने उनके पारिवारिक सदस्य के रूप में या पड़ोसी के रूप में भगवान की संगति का वास्तविक भोग किया है, उनके भाग्य का क्या कहना, क्या बात कह रहे हैं श्री प्रभुपाद जी। केवल जो जान लेता है, केवल जो मथुरा की लीलाएं जानता है, जो यदुवंश के विषय में जानता है, केवल श्रवण करके भगवान कहते हैं पुनर्जन्म नैति, तो उससे भी जब मोक्ष प्राप्त हो जाता है तो वो लोग जो भगवान के साथ रहते थे, भगवान की लीलाओं का स्वादन करते थे, जो भगवान के सानिध्य में रहते, जिन्हें भगवान की संगति का वास्तविक भोग किया, उनके भाग्य का क्या कहना, वो साधारण नहीं हो सकते। इसलिए हम अपनी साधारण बुद्धि से उनके सौभाग्य का अनुमान भी नहीं लगा सकते। जिन लोगों को लक्ष्मीपति भगवान के सानिध्य का सु अवसर प्राप्त हुआ, उन्हें तो मुक्ति से बढ़कर उपलब्धि हुई ना।
है ना। मुक्ति तो केवल सुनने वालों को ही प्राप्त हो जाती है, लेकिन जिन्हें सानिध्य प्राप्त हुआ उन्हें तो मुक्ति से भी बढ़कर उपलब्धि हुई। अतएव सचमुच ही भगवान की कृपा से उनका वंश तथा उनकी भूमि दोनों ही सदैव यशस्वी है। वास्तव में भगवान का जिनके साथ भी संपर्क हो जाता है, जिस भी वस्तु के साथ, जिस भी व्यक्ति के साथ, जिस भी कुल के साथ, जिस भी भूमि के साथ, जिस भी स्थान के साथ भगवान श्री कृष्ण का संपर्क हो जाता है, जुड़ जाता है, जो भगवान का नाम किसी भी देह के साथ, किसी भी व्यक्ति के साथ जब वो कृष्ण का हो जाता है तो वो यशस्वी हो जाता है, तो वो पुण्यतमम हो जाता है। इसलिए हम सबको चाहिए कि अपना संपर्क जो हम भौतिक व्यक्ति और वस्तुओं से बनाकर बैठे हुए हैं, अपने संपर्क को उस लक्ष्मीपति यदीश पुंसा ऋषभ श्रेयपति, जो इस पुरुष जो कि श्रेयपति लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण है, उसके साथ हम अपना संपर्क जोड़ेंगे तो हमारी भी समस्त अपवित्रता समाप्त होकर यश प्राप्त होगा। आगे अगले श्लोक में द्वारिका की प्रशंसा कर रही हैं। वे कह रही हैं, अरे सखियों, धन्य है द्वारिका। ये द्वारिका ऐसी नगरी है जो स्वर्ग के यश का तिरस्कार करती है। मेरे साथ साथ अध्ययन कीजिए। वे कहती हैं, अहो वद स्वर यशस्तिरस्करी कुशस्थली पुण्य यशस्करी भुवा पश्यन्ति नित्यं यदनु ग्रहीषितं स्तावलोकं स्वपतिं स्म यत् प्रजा। अहो बदस्वर यशस्त्रिस्थिरस्करी कुशस्थली पुण्ययशस्करी भुव पश्यन्ति नित्यं यदनु ग्रहेशितं स्मतावलोकं स्वपतिं स्मयत् प्रजा। अहो बत स्वर यशसस्तिरस्करी कुशस्थली पुण्ययशस्करी भुव पश्यन्ति नित्यं यदनु ग्रहेशितं स्मतावलोकं स्वपतिं स्मयत् प्रजा। अहो बत स्वर यशस्तिरस्करी कुशस्थली पुण्ययशस्करी भुव पश्यन्ति नित्यं यदनु ग्रहीषितं स्मतावलोकं स्वपतिं स्मयत् प्रजा। अहो बत स्वर यशस्तिरस्करी कुशस्थली पुण्ययशस्करी भुव पश्यन्ति नित्यं यदनु ग्रहीषितं स्मतावलोकं स्वपतिं स्मयत् प्रजा। अहो बत स्वर यशस्तिरस्करी कुशस्थली पुण्ययशस्करी भुव पश्यन्ति नित्यं यदनु ग्रहीषितं स्मतावलोकं स्वपतिं स्मयत् प्रजा। अहो बत अहो बत, यह कितना आश्चर्य है। मतलब स्वर्ग की, यहाँ पर स्वर्य यशस तिरस्करी, स्वर्ग की महिमा को भी तिरस्कृत कर दिया, स्वर्ग की महिमा को भी पराजित करने वाला है। कुशस्थली पुण्य यशस करीब हुआ, कुशस्थली मतलब द्वारिका, द्वारिका को कहते हैं पुण्य शुभ कर्म यशस करी यानी प्रसिद्ध है भुव इस संसार में। अभी क्या हुआ कि जब द्वारिका में भगवान श्री कृष्ण का आवागमन हुआ तो द्वारिका की कीर्ति स्वर्ग की कीर्ति से बहुत आगे निकल गई, है ना। स्वर्ग की कीर्ति को तिरस्कार कर दिया। द्वारिका ने स्वर्ग की कीर्ति को मिट्टी में मिला दिया, क्योंकि स्वर्ग में वैसे तो सब कुछ है, परंतु स्वर्ग में कहीं भी कृष्ण नहीं है। स्वर्ग में कितना भी वैभव हो, लेकिन वहाँ पर कृष्ण नहीं रहते, स्वर्ग में नहीं रहते कृष्ण। तो स्वर्ग वासियों को, जो स्वर्गवासी हो जाते हैं ना, उन्हें कृष्ण के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त नहीं होता। इसलिए भगवान क्योंकि द्वारिका में है, इसलिए पृथ्वी का यश जो है वो स्वर्ग से भी अधिक है। भगवान ने द्वारिका में, जब द्वारिका के जो जीव हैं, द्वारिका के जो रहवासी हैं, उनको कितना सुगम है कृष्ण का दर्शन करना। ना केवल कृष्ण का, पश्यन्ति नित्यम, वो तो नित्य भगवान का दर्शन करते हैं। यद अनुग्रहेषितम, और भगवान उनके साथ उनका कैसे दर्शन करते हैं, मतलब भगवान उनको कैसे देखते हैं। पश्यन्ति नित्यम, जो द्वारिका वासी हैं, भगवान उनको अनुग्रह के साथ देखते हैं। अनुग्रह के साथ मतलब बहुत अपना मान करके, ये मेरे जैसे, किसी प्रजा, जो राजा होता है अपनी प्रजा को कैसे देखता है कि मेरी प्रजा है। तो द्वारिका, क्योंकि भगवान की प्रजा वहां पर रहती है, भगवान द्वारिकाधीश हैं, तो द्वारिका वासियों को अनुग्रह के साथ देते। जैसे माता पिता अपनी संतान को कैसे देखते हैं, कितना प्रेम से देख रहे होते हैं। वो कुछ भी कर रहा होता है संतान, कोई कार्य कर रहा होता है, मतलब दूसरे हजार बच्चे कर रहे होंगे, लेकिन उसके बीच में मेरा बच्चा अगर उल्टा पुल्टा भी कर रहा होगा तो माता पिता की नजर उसी पर जा रही होगी कि देखो वो कैसे कर रहा है ना। तो उसी तरह से द्वारिका के जन जो हैं, द्वारिका के जो रहवासी हैं, भगवान उन्हें अपना मानते हैं। तो अनुग्रह के साथ, और कैसे, स्मतावलोकम। स्मतावलोकम का मतलब है कि मंद मुस्कान के द्वारा, बहुत ही मधु मुस्कान भरी चितवन के साथ उनको देखते हैं हंसते हुए, मतलब उनसे इतना प्रेम करते हैं और बहुत ना अनुग्रह के साथ, प्रेम के साथ उनको देखते हैं। तो वास्तव में भक्तों, ये जो भगवान के नित्य दर्शन का सुख है या भगवान के अनुग्रह का सुख है, वो सुख स्वर्ग में नहीं है। इसलिए कह रहे हैं अहोबत स्वर्य यशस तिरस्करी, उसके यश को, स्वर्ग के यश को तो तिरस्कार कर दिया भगवान ने। क्योंकि जब भगवान पुण्य, यहाँ पर पुण्य भूमि द्वारिका में है, तो द्वारिका वासियों को कितना सहज से भगवान का दर्शन प्राप्त हो रहा है, और भगवान उनके ऊपर अनुग्रह कर रहे हैं, उनको मुस्काते हुए, मतलब ऐसा नहीं है द्वारिका में कभी कभी भगवान टेंशन में आ जाते हो या फिर ना मूड खराब, नहीं, द्वारिका में भगवान सदैव स्मतावलोकम, बहुत मतलब मंद मुस्कान के द्वारा एकदम रिलैक्स होते हैं। और यहाँ पर बहुत ही सुंदर शब्द दिया स्वपतिम। स्वपतिम का मतलब होता है द्वारिका के जितने भी जीव हैं, पति का मतलब होता है जीवों की आत्मा का स्वामी, है ना। पति का मतलब होता है स्वामी, और स्वपतिम का मतलब होता है हमारी आत्मा। अभी देखो, संसार में हर एक व्यक्ति का एक पति होता है, हर एक स्त्री का एक पति होता है, लेकिन वो पति किसका होता है, उसकी देह का होता है ना, देह का संबंध होता है उस पति के साथ। परंतु स्वपतिम का मतलब होता है आत्मा का पति। तो वास्तव में कोई दूसरा हमारे देह का पति हो सकता है, परंतु आत्मा का पति यदि कोई है तो वो भगवान श्री कृष्ण है। वास्तव में हमारी आत्मा का संबंध किसी के साथ भी है, यदि हमारी आत्मा का कोई भाई है, कोई बंधु है, कोई प्रेमी है, कोई मित्र है, कोई वास्तव में हमारी आत्मा का संबंध किसी के साथ है तो वो कृष्ण के साथ है। और द्वारिका वासियों को वो संबंध निभाने का अवसर प्राप्त है ना। हम इस पृथ्वी में और कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि उनको अवसर प्राप्त हो कृष्ण के साथ संबंध का, संबंध जोड़ देते हैं, लेकिन फिर भी उस संबंध का डायरेक्ट से आस्वादन यदि किसने किया है तो द्वारिका वासियों ने किया है। अनुवाद देखिए, निसंदेह ये कितना आश्चर्यजनक है कि द्वारिका ने स्वर्ग के यश को पछाड़ कर पृथ्वी की प्रसिद्धि में वृद्धि की है। द्वारिका के निवासी उनके प्रिय स्वरूप में समस्त जीवों की आत्मा कृष्ण का सदैव दर्शन करते हैं, भगवान उन पर दृष्टिपात करते हैं और अपनी मधुर मुस्कान से उन्हें कृतार्थ करते हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, स्वर्ग में इंद्र, चंद्र, वरुण तथा वायु जैसे देवता निवास करते हैं और पुण्य आत्माएं वहां तभी पहुंचती हैं जब पृथ्वी पर वे अनेक पुण्य करती हैं। आधुनिक विज्ञानी स्वीकार करते हैं कि उच्च लोक में आयु व्यवस्था पृथ्वी से भिन्न है। जिस प्रकार शास्त्रों से यह पता चलता है कि वहां पर आयु 10,000 वर्ष यानी हमारी गणना के अनुसार 10,000 वर्ष है, पृथ्वी की 6 मास स्वर्ग पहुंचने के एक दिन के बराबर होते हैं। इसी प्रकार भोग की सुविधाएं भी अधिक हैं और वहां के निवासियों की सुंदरता अतिशय है। पृथ्वी के सामान्य लोग स्वर्ग पहुंचने के लिए अत्यंत ही इच्छुक रहते हैं, क्योंकि उन्होंने सुन रखा है कि पृथ्वी की उपेक्षा वहां जीव को अधिक सुविधाएं प्राप्त हैं। अब वे अंतरिक्ष यान द्वारा चंद्रमा पर पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। इन सब बातों पर विचार करते हुए पृथ्वी की उपेक्षा स्वर्ग अधिक प्रसिद्ध है, लेकिन द्वारिका के कारण पृथ्वी की प्रसिद्धि के ने स्वर्ग को परास्त कर दिया है, क्योंकि यहाँ पर कृष्ण ने राजा के रूप में राज्य किया। इस पृथ्वी के 3 स्थान वृंदावन, मथुरा तथा द्वारिका ब्रह्मांड के प्रसिद्ध लोकों से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। ये 3 स्थान इसीलिए निरंतर पवित्र हैं क्योंकि जब भी भगवान अवतार लेते हैं तो वे विशेषकर इन्हीं 3 स्थानों में अपनी दिव्य लीलाओं का प्रदर्शन करते हैं। तो यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी कितना सुंदर बता रहे हैं कि भले ही स्वर्ग में लोगों की आयु बहुत बड़ी होती है, स्वर्ग में जीव बूढ़ा नहीं होता, स्वर्ग में जीव बहुत सुंदर रहता है, स्वर्ग में हर एक वस्तु जिसकी हम इच्छा करते हैं वो बहुत ही आसानी से, सुविधाएं बहुत सारी प्राप्त हैं, परंतु भले ही पृथ्वी से स्वर्ग बहुत ज्यादा महान है दूसरी चीजों में, लेकिन जब भगवान ने इस संसार में पृथ्वी में अवतार लिया है तो पृथ्वी जो है वो स्वर्ग की महिमा को खंडन कर गई। स्वर्ग की महिमा को तो मिट्टी में मिला दिया, क्योंकि स्वर्ग में भले ही सब कुछ हो लेकिन कृष्ण का सानिध्य नहीं प्राप्त होता है। तो श्रील प्रभुपाद जी बता रहे, वृंदावन, मथुरा तथा द्वारिका ब्रह्मांड के प्रसिद्ध लोकों से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। ये 3 स्थान इसीलिए निरंतर पवित्र है क्योंकि जब भी भगवान अवतार लेते हैं तो वे विशेषकर इन्हीं 3 स्थानों में अपनी दिव्य लीलाओं का प्रदर्शन करते हैं। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, ये निरंतर भगवान के पवित्र स्थल हैं और आज भी भगवान के यहाँ दृष्टिगोचर ना होने पर भी भक्तगण इन पवित्र स्थानों का लाभ उठाते हैं। भले ही भगवान अभी दृष्टिगोचर नहीं है लेकिन वहां पर भगवान का अनुभव अब भी करते हैं भक्तजन। भगवान सभी जीवों के आत्मा हैं और वे चाहते हैं कि सारे जीव अपने स्वरूप में रहकर उनके सानिध्य में दिव्य जीवन में भाग लेते रहें। उनका आकर्षक रूप तथा उनकी मधुर मुस्कान प्रत्येक के हृदय में घर करने वाली है और एक बार ऐसा हो जाने पर जीव भगवान के धाम में प्रवेश पा जाता है। जब एक बार हृदय में भगवान की मुस्कान घर कर लेती है, जब एक बार जीव भगवान को देख लेता है ना, हंसते हुए मेरी ओर देख रहा है कृष्ण, तो वो मुस्कान हमारे हृदय में घर कर देती है और जीव भगवान के धाम में प्रवेश पा जाता है जहाँ से वह कभी भी नहीं लौटता। इसकी पुष्टि श्रीमद् भगवद गीता। अब यहाँ पर भी ऐसा होता है, देखो कि हमारा आकर्षण होता है ना जीव का, वो विभिन्न ऐश्वर्यों में जो बहुत ज्यादा, कभी अगर हमें कोई मिले जो बहुत ज्यादा सुंदर हो तो उसकी ओर हमारा आकर्षण होता है। अगर बहुत ज्यादा कोई ज्ञानी मिलता है तो उसकी ओर हमारा आकर्षण हो जाता है। यदि कोई बहुत ज्यादा बलशाली व्यक्ति से हमारी मुलाकात होती है तो उसकी ओर हमारा आकर्षण हो जाता है। कोई बहुत ज्यादा धनी होता है तो उसकी ओर हम आकर्षित हो जाते हैं। लेकिन द्वारिका वासियों का कितना सौभाग्य है कि उनके सामने संसार का सबसे
जो सुंदर व्यक्ति है, जिससे ज्यादा सुंदर और कोई नहीं, जिससे ज्यादा धनी और कोई नहीं, जिससे ज्यादा ज्ञानी और कोई नहीं, जिससे ज्यादा बलशाली और कोई नहीं, जिससे ज्यादा वैराग्य और कोई नहीं, ऐसा व्यक्ति। अब जाहिर सी बात है, जब सारे ऐश्वर्यों का स्वामी उनके सामने है तो उनकी ओर आकर्षण तो स्वाभाविक है, और जैसे ही उनकी ओर आकर्षण उत्पन्न हो जाता है तो यहाँ श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं बस उनकी ओर आकर्षण स्थापित हो गया और जीव भगवान के धाम में प्रवेश कर जाता है, जहां से उसे कभी भी भौतिक संसार में वापस लौटना नहीं पड़ता। इसकी पुष्टि श्रीमद् भगवद गीता में हुई है। श्रीला प्रभुपाद जी आगे बोलते हैं, भले ही स्वर्ग में भौतिक भोग की अच्छी सुविधाएं क्यों न हो, बहुत भले भोग हो वहां पर, सुंदरता है, यश है, हमारी सारी इच्छाएं पूरी होती है, लेकिन श्रीमद् भगवद गीता 9:20 and 21 में भगवान कहते हैं कि क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम विशन्ते। ये हम जानते हैं कि जो ही संचित पुण्य क्षीण हो जाते हैं त्यों ही मनुष्य को पुनः पृथ्वी पर आना पड़ता है। द्वारिका स्वर्ग लोक से इसलिए अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि जिस किसी को भी भगवान की स्मृति चितवन की प्राप्ति हुई है उसे इस सड़ी गली धरती पर फिर से नहीं आना पड़ता, जिसे भगवान ने भी दुख का स्थान कहा है। ना केवल यह पृथ्वी अभी तो ब्रह्मांड के सारे लोक दुख के स्थान है। भगवान कहते हैं आब्रह्म भुवना लोका पुनरावृति नोर्जुन माम पैत्य तो कौनते पुनर्जन्म न विद्यते, क्योंकि ब्रह्मांड के किसी भी लोक में ना तो शाश्वत जीवन है, ना शाश्वत आनंद है और ना ही शाश्वत ज्ञान है। जैसे भगवान कहते हैं 5:22 में, आद्यंतवंत कौन्तेय नतेषु रमते बुधा, जो वास्तविक में ज्ञानी होते हैं वो तो इन भौतिक वस्तुओं की ओर आकर्षित कभी भी नहीं होते। तो यहाँ श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं जो व्यक्ति भगवान की भक्ति में लीन रहता है उसे उपर्युक्त तीन स्थानों यानी द्वारिका, मथुरा या वृंदावन में से किसी एक में रहने की संस्तुति की जाती है, क्योंकि इन तीनों स्थानों में भक्ति का प्रवर्धन होता है। अतएव जो लोग शास्त्रों की बताई विधि से नियमों का पालन करने के लिए वहां जाते हैं उन्हें वैसा ही फल मिलता है जैसा भगवान श्री कृष्ण की उपस्थित रहने पर उनका धाम तथा स्वयं वे अभिन्न है। और आज भी एक शुद्ध भक्त किसी अन्य अनुभवी भक्त के निर्देशन में सारे फल प्राप्त कर सकता है। तो यहाँ पर हम भगवान का सानिध्य प्राप्त करते हैं, चाहे भगवान उपस्थित हो या भगवान उपस्थित अभी हमारे दृष्टिगोचर नहीं है, लेकिन क्योंकि भगवान का धाम, भगवान का गुण, भगवान का नाम, भगवान की लीलाएं, ये सब अभिन्न है। तो श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं आज भी एक शुद्ध भक्त किसी अन्य अनुभवी भक्त के निर्देशन में सारे फल प्राप्त करता है। तो अगर हम भक्तों का संग करते हैं, भक्तों के संग के साथ भगवान की लीलाओं का, भगवान की लीला स्थलियों के विषय में, जैसे आज हम सुन रहे हैं द्वारिका के विषय में, वृंदावन के विषय में, यदुवंश के विषय, तो जब भक्तों का संग करते, जैसे हमें श्रीला प्रभुपाद जी कितने सुंदर तरीके से एक एक शब्द के विषय में बताते हैं, तो हमें कैसा लगता है कि भगवान का सानिध्य प्राप्त हो रहा है। तो श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं कि आज भी एक शुद्ध भक्त किसी अन्य अनुभवी भक्त के निर्देशन में सारे फल प्राप्त कर सकता है। वास्तव में भक्तों भगवान का दर्शन करने के दो तरीके हैं, एक तो नेत्रों से और दूसरा करणों से। लेकिन किसी भी चीज के दर्शन करने के दो तरीके होते हैं, हम नेत्रों से दर्शन करते हैं या करणों से, लेकिन वास्तव में भगवान के दर्शन ना कर्णों से किए जाते हैं। जब कानों से, अभी देखो एक विग्रह होगी भगवान की, आप अगर उसको नहीं समझते हो कि ये किसकी विग्रह है, ये कौन है, नहीं समझते, तो भले आप आंखों से देखते रहो लेकिन उसके प्रति आपका कोई आकर्षण नहीं होगा क्योंकि आप उसे जानते नहीं हो। जैसे बांके बिहारी की विग्रह है या किसी की भी हम देखते हैं भगवान की कोई विग्रह, तो जो नहीं जानते वो कौन है उनकी ओर कैसे आकर्षण हो सकता है। लेकिन भले आपके सामने विग्रह नहीं हो भगवान की, आप उनके विषय में सुनते हो कि बांके बिहारी ऐसे हैं, वो इतना प्रेम करते हैं, वो भगवान ऐसे हैं जो भक्तों की ओर आ जाते हैं, खाली भक्त जो है वो उनको जोर निहारते हैं तो भक्तों की ओर आ जाते हैं, भगवान भक्तों से इतना प्रेम करते हैं। तो कोई भी हम अगर भगवान की लीलाएं उनको बता रहे होते हैं तो भले सामने भगवान नहीं होते लेकिन फिर भी भगवान के प्रति हमारा आकर्षण उत्पन्न हो जाता है ना।
तो जब हम कथा, अभी जैसे वृंदावन में कोई रहता हो या गया हो, भले उसने सुना नहीं हो वृंदावन के विषय में, तो इतना आकर्षण उसे नहीं होगा, एक पिकनिक पॉइंट की तरह भी उसको घूम के आ सकता है। लेकिन जो भक्तजन होते हैं, जिन्होंने वो भले वृंदावन जा रहे गए नहीं होते हैं, लेकिन जब वो भक्तों से सुनते हैं उनकी महिमा के विषय में, तो वो इतना प्रेम करते हैं वृंदावन से, तड़प उठते हैं जब वृंदावन की कोई बात सुनते, तो हृदय में आता है कि मुझे कब जाने को मिलेगा, मेरा ऐसा सौभाग्य कब होगा, राधा रानी मुझ पर ऐसी कृपा। ये तड़प जो है, ये जो आस्वादन है ना प्रेम का, कि मुझे भी कृष्ण को प्राप्त करना है, मुझे भी कृष्ण से मिलना है, तो ये सिर्फ श्रवण करने से उत्पन्न होती है। जैसे जैसे हम श्रवण करते हैं, तो हमें हमारा वो सौभाग्य है कि श्रीमद् प्रभुपाद जी इतने सुंदर तरीके से उनके सानिध्य में हम श्रीमद् भागवतम को श्रवण कर रहे हैं, जिससे हम हमारे कृष्ण प्रेम में दिन प्रतिदिन वृद्धि हो सकती है। कृपया साथ रहिएगा, मेरे लिए प्रार्थना अवश्य कीजिएगा कि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे तरीके से कर सकूं। हरे कृष्ण।